वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह लुकमान की आयत क्रमांक 29 और 30 की तिलावत सुने।
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن
क्या तुमने देखा नहीं कि ईश्वर रात को दिन में और दिन को रात में प्रविष्ट करता है और उसने सूर्य और चंद्रमा को वश में कर रखा है जिनमें प्रत्येक एक नियत समय तक आगे बढ़ रहा है और जो कुछ तुम करते हो ईश्वर उससे पूरी तरह अवगत है। ये इसका प्रमाण है कि ईश्वर ही सत्य है और उसे छोड़कर जिनको ये पुकारते हैं वो असत्य है और निश्चय ही ईश्वर सर्वोच्च और महान है।
पिछले कार्यक्रम में सृष्टि में ईश्वर के ज्ञान व शक्ति के असीम होने की बात कही गई थी जो प्रलय में मनुष्य की पुनः रचना में उसके सक्षम होने का प्रमाण है। ये आयतें ईश्वर की शक्ति का एक अन्य उदाहरण पेश करती हैं और पैगंबर व ईमान वालों को संबोधित करते हुए कहती हैं, साल के विभिन्न अवसरों पर दिनों और रातों का छोटा या बड़ा होना जो विभिन्न ऋतुओं के साथ होता है धरती के ईश्वर के वश में होने का एक चिन्ह है। वस्तुतः उसी की युक्ति से दिन में इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें वैज्ञानिक मानदंडों से समझा जा सकता है।
आगे चलकर आयत कहती है कि न केवल धरती ईश्वर के वश में है बल्कि सूरज और चांद का भी जो धरती में मौजूद जीवों के जीवन में अत्यंत प्रभावी हैं। इस प्रकार कार्यक्रम बनाया गया है कि वे वनस्पतियों पशुओं और मनुष्यों के लिए उचित ढंग से जीवन का वातावरण उपलब्ध कराते हैं। ईश्वर द्वारा इन चीज़ों को वश में लेने का प्रमाण यह है कि ये परिस्थितियां हमेशा बाकी नहीं रहेंगी बल्कि केवल उसी समय तक रहेंगी जब तक ईश्वर चाहेगा और जब उसकी इच्छा से प्रलय आएगा तो सृष्टि की व्यवस्था तबाह हो जाएगी।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर की पहचान के मार्गों में से एक सृष्टि और उसके रहस्यों का अध्ययन है और कुरान मजीद ने इस शैली पर बल दिया है।
संसार की व्यवस्था और ग्रहों की परिक्रमा का एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम है। इस संसार का एक अंतिम बिंदु है जो ईश्वर के ज्ञान में निर्धारित है।
ईश्वर एक ठोस वास्तविकता है और सृष्टि का आरंभ बिंदु वही है। उसके अतिरिक्त जो भी है वो अस्थिर व नश्वर है।
आइए अब सूरह लुकमान की आयत क्रमांक 31 और 32 की तिलावत सुने।
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ।
क्या तुमने देखा नहीं कि नौकाएं समुद्र में ईश्वर की कृपा से चलती हैं ताकि वो तुम्हें अपनी शक्ति की कुछ निशानियां दिखाए। निसंदेह इसमें प्रत्येक धैर्यवान व कृतज्ञ के लिए निशानियां हैं और जब कोई उफनती हुई लहर घने बादलों की तरह उन्हें ढांप लेती है तो वे ईश्वर को धर्म में पूरी तरह निष्ठा के साथ पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें बचाकर थल तक पहुंचा देता है तो उनमें से कुछ लोग संतुलित मार्ग पर रहते हैं जबकि अधिकतर पथभ्रष्ट हो जाते हैं और हमारी निशानियों का इनकार तो बस वही करता है जो विश्वासघाती कृतघ्न हो।
पिछली आयतों का क्रम जारी रखते हुए कुरान मजीद इन दो आयतों में संसार व मनुष्य में ईश्वर की दो निशानियों की ओर संकेत करते हुए कहता है कि पानी पर नौकाओं का चलना और इस माध्यम से लोगों व सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ईश्वर की शक्ति का चिन्ह है। आज की दुनिया में गाड़ी, रेलगाड़ी और विमान जैसे यातायात के साधनों के बावजूद अधिकतर सामान समुद्रों और महासागरों के माध्यम से इधर से उधर पहुंचाए जाते हैं क्योंकि समुद्र के व्यापक मार्ग निःशुल्क मनुष्य के नियंत्रण में दिए गए हैं।
धरती के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सबसे बड़े संपर्क राजमार्ग के रूप में समुद्र निकट व दूर के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। समुद्रों ने नर्म कालीन की तरह अपने आप को मनुष्य के पैरों में बिछा दिया है ताकि उसकी सेवा में थल और वायु को पीछे छोड़ दे।
समुद्र की अनुकंपा का उल्लेख करने के बाद कुरान मजीद समुद्रों में घटने वाली एक घटना की ओर इशारा करता है जो ईश्वर की पहचान का भी मार्ग है। वो कहता है कि जब समुद्र उफान पर होता है और उफनती हुई लहरें नौका के ऊपर आने लगती हैं तथा उसे इधर से उधर खींचने लगती हैं तब नौका में सवार लोग अपने आप को मौत के मुंह में पाते हैं। इन परिस्थितियों में वे स्वयं की मुक्ति की ओर से निराश हो जाते हैं लेकिन फिर अपने आप उन्हें एक ऐसी शक्ति का विचार आता है जो उन्हें इस खतरनाक परिस्थिति से बचा सकती है। अतः वे पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर को पुकारते हैं और केवल उसी से मदद मांगते हैं।
अलबत्ता जब घटना समाप्त हो जाती है उनकी जान बच जाती है और वे तट तक पहुंच जाते हैं तब अकृतज्ञ लोग उसको भूल जाते हैं जिसे उन्होंने पुकारा था और उसने उन्हें मुक्ति दिलाई थी, बल्कि संभव है कि वो उसका इनकार भी कर दें। इसी के साथ ये भी उल्लेखनीय है कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की घटना के बाद संसार के पालनहार को अच्छी तरह समझ जाते हैं और खतरे से मुक्ति के बाद भी ईश्वर के ही मार्ग पर चलते हैं और उनका ईमान स्थायी हो जाता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर की रचनाओं को साधारण नहीं समझना चाहिए। समुद्र, महासागर और समुद्रों से संबंधित अन्य प्राकृतिक वस्तुएं ईश्वर की निशानियां और उसकी पहचान का मार्ग हैं।
मनुष्य स्वाभाविक रूप से ईश्वर की पहचान की खोज में रहता है लेकिन भौतिक वस्तुएं और सांसारिक साधन एक पर्दे की तरह उसकी इस प्रकृति को ढांक लेते हैं। दुर्घटनाएं और कठिनाइयां और उनके परिणाम स्वरूप भौतिक बातों की ओर से निराशा इस पर्दे को हटा देती है और मनुष्य का ध्यान पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर की ओर कर देती है।
कुछ लोगों का ईमान ठोस व अटल होता है जबकि कुछ अन्य का ईमान अस्थिर व सामयिक होता है।
आइए अब सूरह लुकमान की आयत क्रमांक 33 और 34 की तिलावत सुने।
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ।
हे लोगो, अपने पालनहार का भय रखो और उस दिन से डरो जब न कोई बाप अपनी संतान के काम आएगा और न कोई संतान अपने बाप के काम आने वाली होगी। निश्चय ही ईश्वर का वादा सच्चा है तो सांसारिक जीवन कदापि तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखेबाज शैतान तुम्हें ईश्वर की क्षमा के माध्यम से धोखे में डाले। निसंदेह प्रलय की उस घड़ी का ज्ञान केवल ईश्वर के पास है। वही मेह बरसाता है और जो कुछ माताओं के गर्भाशयों में होता है उसे जानता है। कोई नहीं जानता कि कल वो क्या कमाएगा और कोई नहीं जानता कि किस धरती में उसकी मृत्यु होगी। निसंदेह ईश्वर जानने वाला और खबर रखने वाला है।
ये आयतें जो सूरह लुकमान की अंतिम आयतें हैं, सभी लोगों को अपने जीवन में ईश्वर से डरने की सिफारिश करती हैं। इसका कारण बताते हुए कहती हैं कि संसार के विपरीत जहां परिवार के सदस्य समस्याओं में एक दूसरे की सहायता करते हैं, प्रलय में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और किसी की भी ओर से मदद की संभावना नहीं है। अतः हमें न तो पारिवारिक संबंधों पर घमंड करना चाहिए और न ही इस बात की आशा रखनी चाहिए कि बिना अच्छे कर्मों के हम ईश्वर की दया व कृपा के पात्र होंगे।
प्रलय में मनुष्य का सामना उस ईश्वर से है जो हर छिपी हुई बात को जानता है, जैसे प्रलय का समय, हर मनुष्य की मौत का समय या माँ के गर्भ में मौजूद भ्रूण की स्थिति। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि भ्रूण के संबंध में ईश्वर का ज्ञान केवल उसके लड़का या लड़की होने से संबंधित नहीं है, बल्कि उसकी योग्यताओं, आदतों और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य बातों का ज्ञान ईश्वर को होता है, जिनके बारे में मनुष्य कुछ नहीं जानता। कुल मिलाकर ये कि मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर उसके द्वारा छिपाई गई बातों से अवगत नहीं है।
इन आयतों से हमने सीखा कि वंश और जाति की प्रलय में कोई उपयोगिता नहीं है। जब बाप और बेटा एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो दूसरों का क्या हाल होगा, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।
प्रलय का आना निश्चित है, चाहे हमें उसके समय का ज्ञान न हो। इसी तरह हर व्यक्ति की मौत निश्चित है, लेकिन वो उसके समय व स्थान को नहीं जानता। केवल ईश्वर इन बातों से अवगत है।
दुनिया धोखा देने वाली है और मनुष्य को प्रलय की याद से निश्चेत कर देती है।